ణమోలవే శౌత్రికాళవర్తి హరహంతాణం ణమోలవే శౌత్రికాళవర్తి సిద్ధాణం ణమోలవే శౌత్రికాళవర్తి ఐర్యాణం ణమోలవే శౌత్రికాళవర్తి ఉవచాయణం ణమోలవే శౌత్రికాళవర్తి శవశ్రావణం ఓంకార బిందు సంయుక్త నిత్యం ధ్యాయంతి యోగిన కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః. మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమో గణి మంగళం కుంకుందారియో జైన్ ధర్మో శ్రీమంగళం సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణం జైనం జయతు శాశ్వతం. నమః శమైశారాయ స్వానుభూత్యా చకాశతే చీత్స్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతరచ్చిదే ఏగో మే శాశ్వతో అపార్నాందర్శన్ లక్షణం శేషామే మాయిరా భావ సవే సంయోగ లక్షణం. మారో సుశాశ్వత ఏక దర్శన నాన్ లక్షణ జీవ ఛే బాకీ బదా సంయోగ లక్షణ భావ ముక్తి బాహ్య ఛే తుస్థాప నిజ ని మోక్ష పంథే ध्यानुभव देह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्य विषय. ओम श्री नम शिदेव्य नम शिदेव. समयसार परमानंद की चौदहवीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है. सवेरे अपन ने जो पांच बोल इसमें दिए हुए हैं उसके माध्यम से अपनी चर्चा चली थी. गाथा का पहला पैराग्राफ है उसमें से चर्चा चलती है. अपना जो शुद्धात्मा है वो शुद्धात्मा कैसा है वो यहाँ बता रहे हैं कि अपना शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है. और ऐसा आत्मा अनादि से शुद्ध होने पर भी जीव अज्ञान रूप कैसे प्रति समय परिणम जाता है और वो अज्ञान उसका कैसे चला जाए और उसको ज्ञान में भाव कैसे प्रकट हो जाए इसकी चर्चा यहाँ चौदहवीं गाथा में दी गई है. कोई भी जीव अपनी खुद की अज्ञान भाव से अज्ञान रूप परिणमता है. सचमुच में उसकी उपादान की योग्यता से ही अज्ञान प्रकट हो रहा है. कैसा भी बाह्य में कोई भी निमित्त होवे मगर अज्ञान रूप परिणमने का स्वकाल हो तो उसको कोई ज्ञान रूप परिणमा नहीं सकता. ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता है. पर्याय की स्वतंत्रता भी अगर जीव को वास्तव में बैठ जाए तो उसको द्रव्य की स्वाधीनता पर दृष्टि चली जाती है. ऐसी यहाँ ये पांच भाव स्वरूप आत्मा और बद स्पष्ट आदि पांच भाव की चर्चा द्रव्य और पर्याय के स्वरूप की यहाँ बता रहे हैं. उसमें कहना ये चाहते हैं कि अनादि से तेरा परिणमन विभाव रूप परलक्ष करके मोह राग द्वेष रूप तेरी पर्याय में परिणमन बहिर्लक्ष से अनादि से चल रहा है. एक समय भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने अपने शुद्धात्मा तरफ लक्ष्य नहीं किया, दृष्टि नहीं की, अहम नहीं किया, ज्ञान में ज्ञेय नहीं बनाया, लीनता रूप परिणमन नहीं हुआ. ऐसा ये अज्ञानी जीव को बोध देने के लिए चौदहवीं गाथा लिखी गई है कि उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो जाए. इसके लिए इसमें पूरी चर्चा आचार्य भगवान ने पांच बोल लिखे हैं, फिर पांच बोल के पांच दृष्टांत दिए हैं, दृष्टांत पर से फिर उसके सिद्धांत भी इसमें लिखे हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसमें चौदहवीं गाथा में भर दी है। इसके बाद पंद्रहवीं गाथा है, उसमें भी सम्यक ज्ञान की चर्चा बहुत अलौकिक भरी हुई है। तो ये जो अपनी चर्चा चल रही थी कि अपना जो सुधात्मा है, अपना परिपूर्ण नायक देव परमात्मा है, वो कृतकृत्य है, एक रूप है, अखंड है, अभेद है, निर्विकल्प है, तो वो निर्विकल्प द्रव्य है, उसके असंख्य प्रदेश है, उसका त्रिकाल काल है और उसका अनंत गुणात्मक एक रूप भाव है। तो ऐसे जो अपने सुधात्मा में कोई प्रकार की विभाव की स्थिति या तो पर्याय का परिणमन की स्थिति अपने ज्ञायक भाव में है नहीं, पूर्वे भी नहीं थी, वर्तमान में भी नहीं है, अनंत काल तक उसमें कोई परिणमन आने वाला नहीं है और उसका कभी परिणमन होने वाला नहीं है। ऐसी कोई अपनी वस्तु अनादि से एक सुरक्षित रह गई है, सुरक्षित, वो स्वयं अपने से सुरक्षित है, उसकी किसी ने रक्षा नहीं की है, वो स्वयं सुरक्षित है अपने में, वो कभी अपने स्थिर स्थान से माने कि हटी ही नहीं है। ऐसी एक वस्तु सब जीव के पास विद्यमान है और वो वस्तु ऐसी है कि जीव उसको जैसे देख लेता है तो वो उसको देखा उसी समय, वो तो अनादि से दर्शन दे रहा है भगवान आत्मा, मगर ये दर्शन ले नहीं रहा है, वो दर्शन लेने के लिए जाता ही नहीं उसके पास, वो दर्शन देने के लिए तैयार है, एकदम दर्शन दे रहा है भगवान आत्मा। जैसे जिनेंद्र प्रतिमा होती है ना भगवान की, अपन रोज वंदन करने जाते हैं सवेरे, कोई कारण सर आप नहीं गए आज सवेरे, तो फिर आप शाम को जो तो भी प्रतिमा वो फिर नहीं जाएगी, मुंह हटा देगी, उल्टी नहीं हो जाएगी, वो दयालु है एकदम, वो दर्शन देने का काम कर रही है जिनेंद्र प्रतिमा। ऐसे ये चैतन्य प्रतिमा है, वो चैतन्य प्रतिमा दर्शन देने का काम करती है, जीव दर्शन लेने के लिए जाता ही नहीं उसके पास, अनादि से ये दर्शन दे रहा है भगवान आत्मा, अनादि से अपने में रहकर सुरक्षित होके दर्शन देने की उसकी स्थिति मौजूद है। जब वो दर्शन लेने जाता है तो दर्शन तो मिल ही रहा है, और 17-18 गाथा की अपेक्षा से देखे तो दर्शन तो दे रहा है, ये दर्शन ले भी रहा है, मानता नहीं है। ऐसी जीव की स्थिति है, वो जीव की स्थिति में जो बदस्पष्ट आदि भाव अनादि से चल रहे हैं, कर्म का संबंध है, अन्य अन्य गतियां है, वृद्धि हानि रूप पर्याय का परिणमन है, गुण का विशेष में गुण भेद में वो दृष्टि करता रहता है, मोह के साथ संयुक्त होकर सुख दुख की कल्पना करता रहता है, ऐसा बदस्पष्ट आदि भाव वो भी अनादि से चल रहा है, प्रवाह एक प्रवाह ध्रुव में चलता है और एक प्रवाह बाहर चलता रहता है उसका। ध्रुव में प्रवाह जो चलता है वो एक अनादि से एक ध्रुव का प्रवाह अंदर चल रहा है, चैतन्य का नूर का पूर चल रहा है, ऐसा नूर का पूर, ऐसा ध्रुव का प्रवाह, अखंडित प्रवाह चल रहा है, एकदम ध्रुव 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 ध्रुव, शाश्वतता 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 शाश्वतता, वो प्रवाह रूप बहता हुआ अंदर चल रहा है। ज्ञायक भाव, त्रिकाल ज्ञायक भाव, शाश्वत ज्ञायक भाव, भूतार्थ स्वभाव, वो ध्रुव का प्रवाह चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि ये ध्रुव का प्रवाह तो ऐसे ऊर्ध्व प्रचय से चल रहा है और पानी का प्रवाह ऐसे चल रहा है, ऐसे बोलते हैं गुरुदेव, ध्रुव का प्रवाह ऐसे ऊर्ध्व 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 चल रहा है। ऐसा जो ध्रुव का प्रवाह अंदर जो चलता है वो भी अनादि से चल रहा है, वो भी चैतन्य का नूर का पूर बोल रहे हैं गुरुदेव उसको, चैतन्य का नूर का पूर, नूर का पूर चैतन्य का चल रहा है, नूर का पूर। वहां कोई क्रिया नहीं है, वो तो निष्क्रिय शुद्ध परिणामी कह है, वो क्रिया की बात नहीं है। क्रिया न होने पर भी जानना देखना मौजूद है वहां, त्रिकाल में त्रिकाल का जानना देखना वर्तमान में वर्त रहा है, ऐसा वर्तमान में वर्त रहा है उसको बोला जाता है ध्रुव प्रवाह। ध्रुव की त्रिकालता, ध्रुव का चैतन्य का नूर का पूर वो अंदर में एकदम चल रहा है, वहां शुष्कता नहीं है। ऐसे नायक तो बैठा है, पर्याय में कुछ नहीं हो रहा, अभी नायक तो है, कभी भी देख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, पर्याय में अभी कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। अरे भाई ऐसा शुष्क नहीं है नायक, वहां अंदर में एक उसका खुद का ज्ञान दर्शन का जीवन चलता है अंदर, वो जीवंत स्वामी है अंदर, वो उसका जीवन अंदर में चालू है। कोई समय ऐसा नहीं होता त्रिकाल की त्रिकालता में भी कि त्रिकाल ध्रुव का प्रवाह रुक जाए, त्रिकाल ध्रुव का प्रवाह में ध्रुव को जानना देखना बंद हो जाए। ऐसा अंदर में एक त्रिकालता चलती है अनादि से, अनादि से ये चल रहा है, और वही चलता चलता उपयोग रूप पर्याय वहां से बाहर आती है। ऐसा एक प्रवाह है अंदर में, ऐसा एक ध्रुव प्रवाह है, चैतन्य प्रवाह है, ज्ञायक का प्रवाह है, माने कि चैतन्य का नूर का पूर, पूर की तरह बह रहा है वो अंदर में। ऐसा जीवन है, ऐसा जीवन है अंदर में कि वो जीवन की सार्थकता क्या है, कि वो जीवन मालूम हो जाए उसको कि ऐसा अंदर जीवन चल रहा है, अंदर भी अनंत गुण एक रूप होके ऐसा अपना समाज अंदर में है अनंत गुणों का, वो मेरा जीवन है, वो मेरी स्थिति है, वो मेरी मौजूदगी है, वो मेरी चैतन्यता है, मेरा जीवन बाहर में है ही नहीं कुछ, ऐसा मैं जीवंत स्वामी हूं, ऐसा मैं चैतन्यपना मेरे में चल रहा है अनादि से, अनादि से, अनादि से, अनादि से, वो ध्रुव का प्रवाह है, वो ध्रुव में ध्रुव का जानना देखना चलता है, ऐसा ध्रुव है ये, ऐसा अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है, अपरिणामी है, अभेद है, अखंड है, शाश्वत है, एक रूप है, नित्य है, निर्लेप है, निर्बोध है, जैसा है वैसा का वैसा अंदर में प्रवाह चलता है वहां अंदर। ऐसी कोई स्थिति सुरक्षितता से बच गई है जीव के पास, कितना भी विवाह हो गया परिणमन में, कितनी भी बहिर्मुखता हो गई है, मगर इसमें कुछ नहीं हुआ, यहां कुछ होता ही नहीं, यहां मात्र जानना देखना चलता है, यहां ध्रुव का प्रवाह चलता है, यहां जाज्वल्यमान ध्रुव धारा चलती है अंदर में। ऐसी एक स्थिति ये अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत विशेष असंयुक्त वो पांच विशेषण रूप एक नायक भाव की ऐसी स्थिति है। ऐसा कोई जीवन जिसको ख्याल में आ जाता है कि मेरी अंदर की स्थिति, अंदर का वैभव, अंदर की समृद्धि, अंदर की संपत्ति वो कैसी विशाल और विराट है, पर्याय तो एक समय की छोटी सी है भैया, और वो भी आयुष्य भी एक समय का है उसका, एक ही समय में प्रकट होती है और एक ही दूसरे समय में भी हो जाती है, केवल ज्ञान की पर्याय भी ऐसी है, दूसरे समय में भले ऐसी न ऐसी आवे वो की वो नहीं रहती, चली जाती है, दूसरे समय नहीं, तीसरे समय नहीं, तो उसमें क्यों प्रीति चलती है, उसमें प्रीति चलती है इसलिए इसकी प्रतीति नहीं होती, प्रीति भी इसकी चलनी चाहिए तो प्रतीति होए बिना रहती ही नहीं। तो ऐसा जो एक अपना स्वभाव है, ऐसा जो अपना एक नायक भाव है कि मोराग द्वेष रूप परिणमन चलता है जिस समय, उसी समय ये ऐसा है,
वही समय में ये परमात्मा अंदर से दर्शन दे रहा है, प्रत्येक समय में ऐसी परमात्मा की स्थिति वर्तमान में विद्यमान है, ऐसा भाव यहां कह के वो अनुभूति का प्रकरण चालू करके पांच बोल अभी एक के बाद एक दृष्टांत देके शुरू करेंगे आचार्य भगवान। अनुभूति ऐसी चीज है कि जैसा अपना स्वभाव है उसको पहचानो, उसको नाम दिया जाता है अनुभूति, मात्र उसकी पहचान, मात्र उसकी सत्ता का स्वीकार, मात्र ऐसा मेरा स्वभाव अंदर में अनादि अनंत विद्यमान पड़ा है, एक स्वभाव है वो अनंत गुणात्मक है और एक स्वरूप है, एक गुण में अनंत गुण का रूप है, उसको स्वभाव और स्वरूप बोला जाता है। ऐसा स्वभाव और स्वरूप अंदर में प्रथम से विद्यमान है, अभी चल रहा था ना प्रथम से श्रुत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेके ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना, फिर मर्यादा में लाना मति श्रुत ज्ञान को, मगर निश्चय क्या करना प्रथम में प्रथम, निर्णय क्या करना प्रथम में प्रथम, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसी मेरी वस्तु पड़ी है, वस्तु मात्र में हूं, वस्तु मात्र में हूं, वस्तु मात्र में हूं, एक वस्तु 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 मेरी ऐसी ऐसी विद्यमान है, ऐसी वस्तु मात्र में हूं, ऐसा ये अनादि अनंत स्वभाव निश्चय से अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा आत्मा की जो अनुभूति उसको शुद्ध नहीं कहा जाता है। अभी ये अनुभूति को शुद्ध नहीं तो कहा और अनुभूति को आत्मा भी कहा, अनुभूति एक ही आत्मा उसमें अनुभूति में प्रकाशमान है, माने कि अनुभूति और अनुभूति का विषय उसका कोई भेद वहाँ दिखता नहीं है, अभेद में भेद भाषित नहीं होता, द्वैत प्रतिभाषित ही नहीं होता, एक रूप बना हो जाता है, जैसे पानी होता है ना पानी, अभी पानी बहता 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 समझ लो कहीं चला गया, 94 कलश में आता है ये बात, अभी उसको ढाड़ वाला मार्ग के द्वारा उसको वापिस कर लिया उसने, जो पानी जहां से निकला था ना फिर से वहां आ गया वो पानी, तो अभी पानी का समझ लो कि समुद्र है उसमें से पानी निकला और वही पानी बाहर जाके फिर अंदर समुद्र में मिल गया, तो अभी आप मुझे ये बताओ कि वो बाहर गया था पानी और वो फिर वापिस आ गया पानी, वो पानी कौन सा है इसमें? कोई साइंटिस्ट भी उसको जुदा नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं यहाँ की अनुभूति वो आत्मा है, अनुभूति वो शुद्ध नहीं है। अनुभूति किसको बोलते हैं कि वहां कोई भेद ही नहीं रहता, भेद भाषित ही नहीं होता, उसी का नाम तो अनुभूति है। गुरुदेव दृष्टांत देते हैं कि दोरी होती है ना, दोरी ग्रंथि भेद की बात जब चलती है ना गुरुदेव के श्रीमुख से आती है ना कि ग्रंथि भेद ही नहीं रहा, ग्रंथि भेद नहीं हो रहा है, ग्रंथि भेद नहीं हो रहा, मिथ्या तो नहीं जा रहा है उसका मतलब, तो गुरुदेव दृष्टांत देते हैं उसमें एक कि दोरी होती है ना दोरी, ऐसी लंबी दोरी ले लो आप, उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं गठान, हाँ गांठ, गांठ बांध दो उसमें है? तो वो गांठ है ना, वो गांठ वो मिथ्यात्व की गांठ है, अभी वो दोरी में गांठ तो बंध गई, अभी उसको पता है कि ये गांठ है ना दोरी की ही है और किसी की नहीं है, ये गांठ मिथ्यात्व हुआ है, अपनी पर्याय में ही हुआ है, कहीं बाहर नहीं हुआ है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये गांठ को खोल दो, बस वो गांठ को खोल दो, दोरी ही दिखती है, फिर गांठ है तब भी वो तो दोरी ही है, मगर दोरी रूप देखता नहीं उसको, अभी गांठ खोल गई दोरी ही हो गई, तो अनुभूति कहो कि आत्मा कहो उसमें कोई अंतर ही नहीं दिखता, भेद भाषित ही नहीं होता, उसका नाम अनुभूति है। सोना है ना, सोना सोने के गहने बन गए,
अभी अभी गिरने बन गए वो तो पर्याय हो गई, अभी वो तो पर्याय है, अभी पर्याय तो बन गई, अभी देखना है तो सोना, तो करे क्या कि तो पहले घाट को तोड़ दो। तो क्या घाट को तोड़ ही नहीं सकता, पर्याय को तो मिटा ही नहीं सकता, पर्याय तो पर्याय रूप रहेगी ही, पर्याय की अस्थि के समय ही तू उसी पर्याय में द्रव्य को देख ले। तू घाट मत देख, तू देख कि ये सोना ही है, घाट से तेरी दृष्टि ही चले जाएगी, तुझे सोना ही दिखेगा, उसी का नाम अनुभूति है। घाट घाट रूप रह गया, सोना की दृष्टि हो गई और घाट की घाट में सोना की अनुभूति हो गई, ऐसा ही अनुभूति का प्रकरण है। अबद स्पष्ट अनन्य नियत विशेष असंयुक्त, ऐसे पांच भाव स्वरूप एक आत्मा की अनुभूति, उसका नाम शुद्ध नहीं है, वो अनुभूति है वही आत्मा है। इस रीति से आत्मा एक ही प्रकाशमान है, दो आत्मा नहीं है वहां, अनुभूति का आत्मा जुदा और त्रिकाली द्रव्य जुदा, क्योंकि भेद ही भाषित नहीं होता। अनुभव कि करके कोई बाहर निकले, कोई ज्ञानी विकल्प में आवे, उसको आप पूछो कि अनुभूति के काल में आपने क्या देखा, आपको क्या महसूस हुआ, आपको आपने क्या जाना, तो बोले कि भैया मुझे तो वहां पहली बात तो यह है कि आनंद ही आ रहा था, इसलिए दूसरा तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, मगर मेरा ज्ञान जागरूक था उस समय, तो ज्ञान में आत्मा का ही जानना चल रहा था और आनंद आ रहा था, उसका भी ज्ञान हो रहा था, मगर वो ज्ञान आत्मा आनंद वो कुछ भेद रूप नहीं दिखता था मुझे, मात्र आत्मा 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 आत्मा, आनंद भी नहीं दिखता है, आनंद का ज्ञान का ज्ञान भी नहीं दिखता है, आत्मा का भेद भी नहीं दिखता है, मात्र आत्मा आत्मा और आत्मा ही हूं मैं, ऐसा ही दिखता है। तो बोले कि भाई अनुभूति हुई वो तो पर्याय है, तो बोले कि भैया तुझे भेद विकल्प चलता है पर्याय का, हमें नहीं चलता है, उसको अनुभूति बोली जाती है, उसका नाम अनुभूति है। इसलिए यहां कहते हैं अनुभूति है वही शुद्ध नहीं है, अनुभूति ही आत्मा ही है और उसमें आत्मा एक ही प्रकाशमान है। शुद्ध नहीं कहो या आत्मा की अनुभूति कहो या आत्मा कहो, एक ही है, वो जुदा नहीं है। अभी यहां शिष्य प्रश्न पूछता है कि ऊपर कहा ऐसा आत्मा की अनुभूति कैसे हो सके। अभी वो अपनी चर्चा तो वो सब चल गई है कि ऊपर कहा ऐसा आत्मा की अनुभूति कैसे हो सके, तो यहाँ कहते हैं उसका समाधान करते हैं। इसमें तो गुरुदेव को वो प्रश्न करते हैं ना, तो इसमें बहुत चर्चा चली है उसमें कि ऐसे आत्मा को आपको आज तो अनुभूति का बताना ही पड़ेगा, आज तो ये अनुभूति कैसे हुई उसका स्पष्टीकरण आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे प्रश्न करते सोता। तो गुरुदेव बोलते हैं बद स्पष्ट आदि भाव सब भूतार्थ है, ऐसा तू जान ले मान ले, और मैं अब स्पष्ट अनन्य नियत विशेष असंयुक्त भाव स्वरूप एक त्रिकाल आत्मा हूं, ऐसी दृष्टि कर ले तो उसी समय तुझे अनुभूति और अतिंद्रिय आनंद का स्वाद आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि बद्ध स्पष्ट आदि भावो अभूतार्थ होने से उसकी अनुभूति हो सकती है आत्मा की, ऐसा ये बात अभी दृष्टांत से कह रहे हैं। उसमें ये कहना चाहते हैं कि बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ है, इसलिए शुद्धात्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है, क्योंकि बद्ध स्पष्ट आदि भाव जो है ना वो समयवर्ती भाव होते हैं, वो एक समय के होते हैं, वो एक समय का परिणमन है, वो द्रव्य में द्रव्य त्रिकाल है, द्रव्य अनादि अनंत है, ऐसे द्रव्य पथरा हुआ है, वो असंख्य प्रदेश है, उसमें ऊपर अनंत गुण है, वो अनंत गुण से अनंत गुण की पर्याय प्रकट होके फिर व्यय होती है, प्रकट होके फिर व्यय होती है, प्रकट होके फिर व्यय होती है, ये प्रकट होती है वो स्वयं उत्पाद होती है, वो स्वयं व्यय होती है, स्वयं उत्पाद होती है, स्वयं व्यय होती है, उसको कोई गुण भेजता नहीं बाहर, द्रव्य ऐसा ना ऐसा स्थिर रहता है, बिंब पर्याय स्वयं अपना उत्पाद होके पर्याय स्वयं अपना व्यय कर लेती है, वो भी
अपनी षटकारक की परिणमन शक्ति से ही उसकी पर्याय का परिणमन स्वतंत्र प्रति समय चलता है। उसको कोई परिणमन कराने के लिए समर्थ नहीं है। उसका उत्पाद व्यय स्वतंत्र हो रहा है। वो उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय प्रत्येक समय उत्पाद दूसरे समय व्यय जो समय व्यय उसी समय उत्पाद जो समय व्यय उसी समय उत्पाद दूसरे समय व्यय उसी समय उत्पाद ऐसा उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय और ध्रुव ऐसा उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत वो अनादि अनंत है। देखो प्रमाण भी अनादि अनंत है, आत्मा भी अनादि अनंत है, पर्याय भी अनादि अनंत है। समझना, मैं स्पष्ट करता हूं इसको। त्रिकाली द्रव्य अनादि अनंत है, एक समय की पर्याय भी प्रति समय होने से वो भी अनादि अनंत है, और प्रमाण भी अनादि अनंत है। कोई समय ऐसा नहीं होता प्रमाण नहीं होता। प्रत्येक समय में द्रव्य अनादि अनंत, प्रत्येक समय में पर्याय अनादि अनंत, और प्रत्येक समय में प्रमाण भी अनादि अनंत होता है। अभी द्रव्य तो अनादि अनंत तो ख्याल में आता है, पर्याय अनादि अनंत माने कि एक 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 समय से अनादि से धारावाहिक चल रही है तो वो भी स्वीकार कर लेते हैं। अभी प्रमाण का कैसे स्वीकार करें अनादि अनंत? प्रमाण रूप सत्ता अनादि अनंत है कि भैया ऐसा है, प्रमाण रूप सत्ता कभी नाश ही नहीं होती। जब द्रव्य पर्याय रूप प्रमाण सत्ता तू देखता है, प्रमाण का विषय तुझे पता चलता है, तो प्रमाण की सत्ता में भी एक आगम का प्रमाण होता है, एक अध्यात्म का प्रमाण होता है। दो प्रकार का प्रमाण चलता है। आगम का प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण माने क्या? निश्चय और व्यवहार दो सत्ता जिसमें शामिल हो उसे प्रमाण कहा जाता है। निश्चय और व्यवहार दो सत्ता किसमें शामिल है? तो कि द्रव्य में शामिल है। तो कि उसमें निश्चय कैसा कौन सा और व्यवहार कौन सा, ये आगम प्रमाण की चर्चा अभी चल रही है। आगम प्रमाण में निश्चय है वो तो त्रिकाली द्रव्य है, और व्यवहार है वो मोराग द्वेष वाली अज्ञान रूप पर्याय को व्यवहार कहते हैं, और वो दोनों को साथ में देखना उसका नाम आगम का प्रमाण बोला जाता है। ये एक बात हो गई। ये आगम का प्रमाण तो चल रहा है, अनादि से चल रहा है, अज्ञानी जीव को यही चल रहा है, उसमें शुद्धात्मा है प्रमाण में, मगर निकाला नहीं उसने। अभी वो निकालेगा तो प्रमाण सही प्रमाण हो जाएगा। आगम का प्रमाण में निश्चय त्रिकाली द्रव्य, व्यवहार माने पर्याय में चलते हुए अज्ञान मोहराग देश वाले भाव, वो दोनों को एक साथ देखना उसका नाम आगम का प्रमाण हो गया। अभी अपने को समझना है अध्यात्म का प्रमाण, और वो समझने के लिए त्रिकाली द्रव्य अंदर से पहले निकालना पड़ेगा। प्रमाण में से जो शुद्ध नहीं का विषय निकालता है वो जिन वचन में कुशल है, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है। ये प्रमाण का द्रव्य में से जो शुद्ध नहीं का विषय निकालता है वो जिन वचन में कुशल है। प्रमाण को पूज्यता कभी नहीं मिल सकती, चाहे आगम का प्रमाण हो चाहे अध्यात्म का प्रमाण हो, वो कभी पूज्य नहीं हो सकता। त्रिकाली द्रव्य ही पूज्य हो सकता है। तो ये क्या बात कर रहे हो, त्रिकाली द्रव्य तो अकेला रहता है, आगम का प्रमाण अध्यात्म का प्रमाण का विषय तो बहुत बड़ा है, तो उसको आप पूज्य नहीं कहोगे, और अकेला ध्रुव को पूज्य कहोगे तो थोड़ी चलेगा। ये भैया ऐसा है, प्रमाण में व्यवहार का निषेध करने की शक्ति या ताकत ही नहीं है। ये नई चक्र में लिखा है, प्रमाण में व्यवहार का निषेध करने की शक्ति ही नहीं है। व्यवहार का निषेध तो शुद्ध नहीं ही कर सकता है। तो वो आगम का प्रमाण में से शुद्ध नहीं का विषय जो ये अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त जो निकालता है कि मैं तो त्रिकाली द्रव्य हूं, ये जो मोरादेस चल रहे हैं वो मेरे नहीं है। ऐसा जो बदस्पष्ट आदि भावों का निषेध करके त्रिकाली द्रव्य का आदर कर लेता है तो उसी समय एक निर्विकल्प प्रमाण प्रकट होता है। वो निर्विकल्प प्रमाण है, वो अध्यात्म का प्रमाण है। वो अध्यात्म का प्रमाण कब चालू होता है? त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि होने से। इसलिए सब में मुख्यता त्रिकाली द्रव्य की रहती है। अरे मुख्यता तो नहीं, सर्वस्वता रहती है। मुख्य करोगे तो गौण पिच खड़ा हो जाएगा। कुछ तो आता है शास्त्र में भी कि व्यवा पर्याय को गौण करके अभूतार्थ कहना, पर्याय को गौण करके अभूतार्थ कहना और त्रिकाली द्रव्य को मुख्य कह के अभूतार्थ कहना है। ऐसा आता है ना ग्यारहवीं गाथा में, उसका अर्थ गुरुदेव ने किया है एक जगह पे। बहुत अच्छा अर्थ है, आप सब लोग पढ़ लेना उसको। नियम सार की 187 नंबर की गाथा है, 187 लास्ट गाथा, उसका प्रवचन है। कारण कार्य नियम सातवें भाग में छपा है। उसमें गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया उसका कि व्यवहार को गौण करके अभूतार्थ कहना, उसका अर्थ क्या। ऐसा चलता है ना कि भाई पर्याय को भी गौण करके अभूतार्थ कहना, माने कि पर्याय है तो सही, ऐसा पर्याय है तो सही, गौण करके अभूतार्थ, गौण करके अभूतार्थ। इसलिए उसकी हयाती रख के वो द्रव्य को देखने की प्रवृत्ति करता है। उसकी हयाती का निषेध नहीं है। पर्याय भी अनादि अनंत है, ये तो पहले मैंने सिद्ध किया है, ऐसी बात मत सोचना। मगर उसको गौण करके अभूतार्थ करना, उसका मतलब क्या है कि वो प्रमाण के द्रव्य की बात है। वो गौण करना और मुख्य करना, मुख्य गौण किसमें होता है? प्रमाण के द्रव्य में होता है। अभी निश्चय का द्रव्य की बात करो, द्रव्य भी दो प्रकार के हैं। एक प्रमाण का द्रव्य होता है, एक निश्चय का द्रव्य होता है। प्रमाण का द्रव्य द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु होती है, निश्चय का द्रव्य अकेला ध्रुव होता है। तो वहां लिखा है कि प्रमाण का द्रव्य जो है उसमें व्यवहार को यानी पर्याय को गौण करके अभूतार्थ कहना, उसका गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया कि द्रव्य में तो पर्याय है ही नहीं। गौण करके अभूतार्थ कहने का अर्थ ऐसा नहीं है कि त्रिकाली द्रव्य में है, त्रिकाली द्रव्य है उसमें भी कहीं पर्याय पड़ी है, इसलिए हम उसको गौण कर देते हैं और त्रिकाली को मुख्य करते हैं। ऐसा अर्थ ही नहीं उसका। ऐसा चलता है कहीं जगह, ऐसा अर्थ ही नहीं है। गुरुदेव ने स्पष्ट किया, इतनी बार स्पष्ट किया गुरुदेव ने, बार 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 वही दोहराते रहे गुरुदेव। फिर वो रामजी बाबूजी ने कहा कि ये बात तो बहुत पहले कहने की जरूरत थी, ये बहुत टाइम चला गया बाद में आपने कहा। तो बोले उसका काल होता है ना, तब आए ना वो बात। तो इसलिए देखो गौण करके अभूतार्थ का मतलब क्या है कि वो प्रमाण का द्रव्य की चर्चा है, निश्चय का द्रव्य की चर्चा नहीं है। वो निश्चय का द्रव्य में तो पर्याय होती ही नहीं, वही दृष्टि का विषय है, वही उपादेयभूत तत्व है, वही आदरणीय तत्व है, वही अहम करने लायक तत्व है, वही ज्ञान का ज्ञेय बनाने लायक तत्व है। उसमें पर्याय है ही नहीं, होती ही नहीं पर्याय उसमें। गौण करके अभूतार्थ माने वो प्रमाण का द्रव्य में उसको गौण करना और त्रिकाली द्रव्य को मुख्य करना, ऐसा कहना चाहते। और ऐसे जैसे आगम का प्रमाण में से जो त्रिकाली द्रव्य को निकालता है, तो वो त्रिकाली द्रव्य को निकाला, दृष्टि द्रव्य पर पड़ गई, तो वहां दृष्टि ज्ञान और आचरण रूप सम्यक चारित्र वहां अभेद हो गया आत्मा से। तो वो पर्यायों को बोला सम्यक प्रकार का व्यवहार, अध्यात्म का व्यवहार, और वो त्रिकाली द्रव्य को बोला अध्यात्म का निश्चय। वो निश्चय और व्यवहार दोनों को साथ में देखो तो अध्यात्म का प्रमाण है वो। तो एक आगम का प्रमाण, एक अध्यात्म का प्रमाण, ये दोनों इसमें से निकलता है। ये पहला पैराग्राफ में से आगम का प्रमाण और अध्यात्म का प्रमाण, क्योंकि निश्चय से अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयोग ऐसा आत्मा वो, माने कि आगम का निश्चय बोलो कि अध्यात्म का निश्चय बोलो, बाद में ये बदस्पष्ट आदि भाव है वो आगम का व्यवहार है, क्योंकि मोराद द्वेष रूप स्थिति बताई है वहां। वो व्यवहार और वो निश्चय को साथ में देखो तो आगम का प्रमाण है, उसमें से शुद्धात्मा की दृष्टि करो तो अनुभूति होती है, तो अनुभूति में सम्यक दर्शन नाम चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, तो वो उसको अध्यात्म का व्यवहार बोला और अध्यात्म का निश्चय तो त्रिकाली द्रव्य है ही। त्रिकाली द्रव्य सब जगह निश्चय रूप माने की सत्यार्थ रूप भूतार्थ रूप ही रहता है। हाँ प्रमाण पूज्य क्यों नहीं है? कोई भी प्रमाण पूज्य नहीं है, कोई भी प्रमाण पूज्य नहीं है, क्योंकि प्रमाण में व्यवहार का निषेध करने की शक्ति ही नहीं है। प्रमाण दोनों को रखता है, अध्यात्म का प्रमाण है उसको वास्तविक निर्विकल्प प्रमाण बोला जाता है। अगर निर्विकल्प प्रमाण होने पर भी उसमें वो व्यवहार जो पर्याय में सम्यक प्रकार का हुआ वो अगर आप पूज्य मानोगे तो त्रिकाली द्रव्य की पूज्यता चली जाएगी, तो वो अध्यात्म का व्यवहार प्रकट ही नहीं होगा। जब त्रिकाली द्रव्य को आप पूज्यतम कहोगे तब ही अध्यात्म का व्यवहार भी प्रति समय चलता रहेगा। अगर उसकी पूज्यता छोड़ दी आपने और द्रव्य पर्याय अध्यात्म का व्यवहार में द्रव्य पर्याय है वो दोनों को भी पूजना शुरू कर दिया तो उत्पाद व्यय की दृष्टि से सम्यक टिकता नहीं है, कभी वो पूज्यता उसको मिलती ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी व्यवहार का निषेध करने की शक्ति नहीं है। अध्यात्म में प्रमाण में भी सम्यक दर्शन नान चारित्र प्रकट हुआ वो भी सम्यक प्रकार का व्यवहार है, निश्चय नहीं है वो, इसलिए उसको पूज्य नहीं कहा जाता। प्रकट हुआ उसी की बात कर रहा हूं। प्रकट हुआ भाई साहब, प्रकट हुआ वो किसके आश्रय से प्रकट हुआ? आश्रयभूत तत्व तो एक ही है, प्रकट होवे कि प्रकट न होवे पूज्यता तो त्रिकाली द्रव्य को ही मिलती है, मगर जब प्रकटता हो गई पर्याय की सम्यक्ता हो गई और सम्यक्ता के काल में भी द्रव्य कर पर्याय का भेद विकल्प छूट गया, एक समय दूसरे समय तीसरे समय प्रति समय पर्याय का द्रव्य पर्याय द्रव्य का अवलंबन लेके शुद्ध होती है, प्रति समय अवलंबन लेके शुद्ध होती है, प्रति समय अवलंबन लेके शुद्ध होती है, इसलिए वो पूज्य नहीं है, त्रिकाली द्रव्य पूज्य है। वो ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है, वो है ही नहीं है पर्याय अभी। माने कि जो अशुद्ध पर्याय को है माना तब वो उपादेय भूत तत्व पर दृष्टि गई, तब वो जो सम्यक प्रकार की पर्याय हुई वो सम्यक प्रकार की पर्याय वो अशुद्ध पर्याय की तरह है ही नहीं है, मगर वो ज्ञेय बन गई, वो जानने लायक हो गई, आदर करने लायक तो एक त्रिकाली द्रव्य ही है, चाहे आगम का प्रमाण हो कि चाहे अध्यात्म का प्रमाण हो, मगर आदरणीय तत्व तो एक त्रिकाली शुद्ध अवध स्पष्ट अनन्य नियत विशेष असंयुक्त ऐसा पांच भाव स्वरूप एक आत्मा जिसको अनुभूति स्वरूप बोला 17-18 गाथा में, माने कि ज्ञान स्वरूप बोला, ऐसा आत्मा ही माने कि आदरणीय है, अहम करने लायक है, उपादेय भूत तत्व है, क्योंकि उसके आश्रय के बिना कोई जीव को शुद्धता प्रकट ही नहीं होती। आश्रय और आश्रयवान उसका भेद विकल्प भी अनुभूति के काल में प्रति समय छूटता है और प्रति समय आश्रय लेती है पर्याय, विकल्प छूटता है आश्रय लेती है, विकल्प छूट जाता है आश्रय लेती रहती है, विकल्प छूट जाता है आश्रय लेती रहती है, नई नई शुद्धि की वृद्धि चलती रहती है। पहले शुद्धि की उपलब्धि समर में हुई और वो शुद्धि की वृद्धि प्रथम समय से चलनी शुरू हुई, दूसरे समय से शुरू हुई, प्रथम में अनुभूति हुई, शुद्धि की वृद्धि 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 वृद्धि, वो आश्रय किसका? तो त्रिकाली द्रव्य का। शुद्धि की वृद्धि हुई उसका भी आश्रय नहीं होता, वो जानने लायक है ही नहीं है, वो अभी वो है ही नहीं है, है तो वो मोह राग द्वेष वाली पर्याय को कह के उपादेय भूत तत्व को ग्रहण कर लिया, अभी वो पर्याय को है के खाते में नहीं डाल सकते आप, क्योंकि वो सम्यक प्रकार का प्रमाण हो गया है, निर्विकल्प प्रमाण हो गया है। अभी आप उसको हे ही बोलोगे तो उसको हे ही बोलने वाला कौन है? क्योंकि जो पर्याय ने सम्यक्ता प्रकट करी वो पर्याय तो त्रिकाली का आदर करने में लगी हुई है, अभी उसमें हे उपादेय का प्रकरण ही नहीं है वहां पे। वहां तो सब आत्मा हो गया, अनुभूति वो आत्मा है, ऐसा कहना चाहते हैं आप। ये सब बहुत समझने लायक बात है, सब गुरुदेव सब कह के गए हैं, कुछ बाकी नहीं है। गुरुदेव ने बहुत स्पष्टीकरण किया है। ये 187 गाथा पढ़ लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 11वीं गाथा में जो व्यवहार को गौण करके अभूतार्थ कहा है ना, तो वो गौण करके अभूतार्थ का मतलब ये है कि वो प्रमाण का द्रव्य में से पर्याय को गौण करना और त्रिकाली द्रव्य को माने कि मुख्य करके उसमें अहम कर लेना। देखो अभूतार्थ और असत्यार्थ जो कहा जाता है ना, उसका भी अर्थ अलग अलग है, एक ही अर्थ नहीं है। वह कहा ना पर्याय अभूतार्थ है, पर्याय असत्यार्थ है। अब यहां भी लगा लो आप बद स्पष्ट आदि भाव में कि पर्याय है वो अभूतार्थ, इसमें लिखा है ना कि बद स्पष्ट आदि भावो अभूतार्थ होने से अपने आत्मा की अनुभूति हो सकती है। तो अभूतार्थ का मतलब क्या है और असत्यार्थ का मतलब क्या है, दोनों बात आती है। हेमचंद जी साहब को तो सब पता है, दोनों बात आती है ना। तो अभूतार्थ माने अमाने नहीं, भूत माने होने रूप, अर्थ माने भाव। अभूत अर्थ माने कि नहीं होने रूप भाव, भूतार्थ स्वभाव में नहीं होने रूप भाव जो है उसको अभूतार्थ कहने में आता है। त्रिकाली द्रव्य भूतार्थ है तो पर्याय है वो अभूतार्थ है। अभी ये एक व्याख्या, अभी उसमें असत्यार्थ भी आता है। तो के असत्यार्थ का अर्थ क्या, तो के त्रिकाली द्रव्य भूतार्थ है और पर्याय अभूतार्थ है। अभी पर्याय असत्यार्थ है तो के वो पर्याय है ने, वो द्रव्य नहीं है, उसका नाम पर्याय असत्यार्थ है। असत्य अर्थ वो सत्यार्थ नहीं है, त्रिकाली द्रव्य सत्यार्थ है, पर्याय है वो द्रव्य नहीं है, इसलिए उसको असत्यार्थ बोला है। अभूतार्थ माने नहीं होने रूप है त्रिकाली द्रव्य में, इसलिए अभूतार्थ बोला है। असत्यार्थ माने कि पर्याय जो है वो द्रव्य नहीं है, इसलिए उसको असत्यार्थ बोला है। ऐसी बहुत बहुत सी व्याख्या गुरुदेव ने की है, आप लोग सब अभ्यास तो करते हो इसलिए सब मालूम ही होगा। बस स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ होने से वो अनुभूति हो सकती है, वो अब दृष्टांत से प्रकट करने में आ रहा है। अभी दृष्टांत कह के शुरू करते हैं। पांच दृष्टांत है, एक कमलिनी के पत्र का दृष्टांत आएगा, एक वो मिट्टी का दृष्टांत आएगा, समुद्र का दृष्टांत आएगा, बाद में वो सोना का दृष्टांत आएगा, और असंयुक्त में दूसरी बात है पानी का दृष्टांत आएगा। तो ऐसा पांच दृष्टांत देके वो दृष्टांत के ऊपर से सिद्धांत सिद्ध करके आचार्य भगवान इसमें अभूतार्थ भूतार्थ क्या है और वो भूतार्थ की दृष्टि कैसे होवे, अभूतार्थ की दृष्टि कैसे छूट जाए, इसका अभी विस्तार कर रहे हैं। संक्षिप्त में पहले पैराग्राफ में सब कह दिया, अभी वो विस्तार करके समझाते हैं, क्योंकि सभी जीव संक्षेप में समझ नहीं सकते, इसलिए दृष्टांत से सिद्धांत भी समझाने का एक व्यवहार होता है। दृष्टांत में गुरुदेव बोल रहे थे आज कि दृष्टांत में दृष्टांत को ही जीव समझता है, दृष्टांत बराबर याद रह जाते हैं, सिद्धांत याद ही नहीं रहता। दृष्टांत दो आप तो दृष्टांत ही याद रह जाए। अभी मैं 10 लक्षण में गया था तो मेरे तो बहुत दृष्टांत देने की शैली नहीं है, तो मैं तो तत्व की ही बात करता था, तो मुझे वो 2 दिन हुआ तो उसने बोला कि भैया थोड़ा दृष्टांत दो, नहीं तो किसी के समझ में नहीं आएगा। तो क्या है, दृष्टांत का लोभ मत रखना, आचार्य भगवान ने दिया है तो अपन उसको देख लेते हैं, बाकी ज्यादा दृष्टांत में उलझना नहीं, क्योंकि क्या होता है दृष्टांत एकदम याद रह जाता है, मगर उसके ऊपर से जाना है सिद्धांत में, सिद्धांत की पहचान करनी है अपने को। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने सिद्धांत बोध की सर्वाणी है ना फोड़ी है, सर्वाणी छूटी है पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से, सिद्धांत बोध की सर्वाणी। सिद्धांत बोध हमेशा अफर रहता है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव फिरने से फिरता नहीं है, अफर होता है सिद्धांत बोध, और उपदेश बोध फिरता रहता है। कोई पंचम काल में उपदेश बोध, चौथे काल में उपदेश बोध, भी कोई भी काल में आप सिद्धांत बोध अफर होता है, वो कभी फिर नहीं सकता। ऐसा गुरुदेव ने सिद्धांत बोध अपने को सिखाया है, इसलिए अपने को उस तरीके से विचार करना चाहिए इसका। देखो यहाँ कहते हैं, जैसे कमलिनी का पत्र जड़ में डूबा हुआ हो, डूबेला हो, उसको जड़ से स्पर्शावा रूप अवस्था से अनुभव करने पर जड़ से स्पर्शावापना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। माने कि कमलिनी का पत्र को आप जल में डुबो दो और देखो तो ऐसा लगता है कि उसका जड़ से स्पर्श हो गया है, वो उस अपेक्षा से वो बात सही है, ऐसा यहाँ कहते हैं। अभी यहाँ ये कहने में, ये दृष्टांत देने में बद स्पष्ट आदि भाव की सिद्धि कर रहे हैं कि भाई पानी और कमलिनी का पत्र एक जगह पे दिखता है, तो पानी में जैसे कमलिनी का पत्र हो, पानी के साथ उसका कोई स्पर्श हो गया हो, उसका कोई संबंध हो, ऐसा पानी में कमलिनी का पत्र देखने वाले को दिखता है, पानी से कमलिनी का पत्र को देखता है, कमलिनी का पत्र से कमलिनी का पत्र को नहीं देखता। एक होता है स्वभाव और एक होता है संयोग। अभी संयोग से जो देखता है उसको ऐसा लगता है कि पानी के साथ कमलिनी का पत्र जो है उसको कुछ संबंध है, वो पानी में डूबा हुआ है ऐसा दिखता है। अभी उसी समय वो संयोग की अपेक्षा को छोड़े और स्वभाव से देखे, कमलिनी का पत्र को उसके स्वभाव से देखे, पानी को न देखे, सीधा कमलिनी का पत्र को देखे, तो कमलिनी का पत्र ने पानी का स्पर्श ही नहीं किया, वो पानी में है ही नहीं कमलिनी का पत्र, कमलिनी का पत्र कमलिनी का पत्र में ही है। गुरुदेव ने बोला आज कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को छूता ही नहीं। यहां दूसरी बात है, समझना, दो बात यहां लागू पड़ती है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को तो छूता ही नहीं, एक द्रव्य की पर्याय भी दूसरे द्रव्य की पर्याय को छूती नहीं है, वो कहना है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक एक संबंध दो द्रव्य की दोनों पर्यायों के बीच में चलता है। द्रव्य तो एक द्रव्य दूसरा द्रव्य, उसको तो कोई संबंध होता ही नहीं, दोनों द्रव्य की दोनों पर्यायों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, तो वो दोनों द्रव्य की दोनों पर्यायों को पानी में डूबा हुआ कमलिनी का पत्र देखता है तो उसको देख ऐसा लगता है कि पानी के साथ कुछ उसका संबंध हो गया है। और उसी समय देखो यहां लिखते हैं, कमलिनी का पत्र जल में डूबा हुआ देखने पर जड़ से स्पर्शावा रूप अवस्था से अनुभव करने पर जड़ से स्पर्शावापना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तो भी जड़ से जरा भी नहीं स्पर्शावा योग्य ऐसा कमलिनी पत्र का स्वभाव की समीप जाके अनुभव करता। पानी में से कमलिनी का पत्र को बाहर नहीं निकालना है, ऐसे जो द्रव्य है वो द्रव्य पर्याय है ही नहीं, बाद में आप द्रव्य देखो तो द्रव्य ही दिखेगा ना, उसमें कौन सी तेरी पुरुषार्थ की बात है, वो मोरा द्वेष है, उसी समय तुझे त्रिकाल को देखना है, मोरा द्वेष चला जाएगा बाद में तो त्रिकाल ही दिखेगा ना, और क्या दिखेगा। ऐसे पानी में डूबा हुआ कमलिनी का पत्र, अभी तू देखता कैसे है, पानी से देखता है कमलिनी का पत्र को कि कमलिनी का पत्र से कमलिनी को देखता है, उसमें मर्द है। संयोग से स्वभाव को देखने का पुरुषार्थ करता है कि स्वभाव से स्वभाव को देखने का पुरुषार्थ करता है, ये कहते हैं कि कमलिनी का पत्र को कमलिनी का पत्र के स्वभाव के समीप जाके देख, समीप जाके देख माने कि पानी को पानी में रहने दे, पानी को कमली, पानी में कमलिनी का पत्र को रहने दे, पानी है उस समय पानी के, पानी से न देखते हुए कमलिनी का पत्र के स्वभाव की समीप चला जा और वहां जाके कमलिनी का पत्र को देख, तो तुझे पानी दिखेगा ही नहीं, पानी ही नहीं दिखेगा तो पानी में कमलिनी का पत्र है वो तो उत्पन्न ही नहीं होता प्रश्न, कमलिनी का पत्र में ही है, उसको पानी से संयोग संबंध भी सचमुच होता ही नहीं। संयोग तो उसकी पर्याय से होता है, पानी से संयोग भी सचमुच नहीं होता, ये यहाँ कहना चाहते हैं। संयोग संबंध भी अपनी पर्याय के साथ होता है, परद्रव्य के साथ नहीं होता है। कमलिनी का पत्र का संयोग संबंध कमलिनी की पत्र की पर्याय के साथ चलता है। ऐसा कमलिनी का पत्र का संयोग का पर्याय को छोड़ के उसका स्वभाव की समीप जाके देख तू, तो तुझे कमलिनी का पत्र ही दिखेगा। पानी की तो बात ही नहीं है, वो तो पृथक द्रव्य है, उससे कुछ संबंध होता नहीं है। कमलिनी का पत्र का मूल स्वभाव और उसकी पर्याय को भी ना देख के वो पर्याय में कमलिनी का पत्र को देख ले तू, तो वो संयोग चला जाएगा, संयोग संयोग में रह जाएगा, स्वभाव दिखने में आ जाएगा, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। देखो क्या कहते हैं, टाइम तो हो गया है, 2 मिनट में पूरा करते हैं। कमलिनी पत्र का स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शावापना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी तरह अनादि काल से बंधा हुआ आत्मा का पुद्गल कर्म से बंधा हुआ स्पर्शावा रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद स्पष्टपणा भूतार्थ है, सत्यार्थ है। माने कि जीव की पर्याय और पुद्गल की पर्याय दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध से देखे तो उसको बदपना, माने कि बदपना उसमें हो रहा है, अभी ऐसा है, ऐसा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो व्यवहार, उसमें अनुभूति नहीं होती। निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म की भ्रांति हो जाती है कि मैं इसका करता हूं, मैं इसको करने वाला हूं, ऐसी भ्रांति खड़ी हुए बिना नहीं रहती। निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान करना वो एक अलग बात, और निमित्त नैमित्तिक संबंध को देखते रहना वो एक अलग बात है। देखने से कर्ता कर्म की भ्रांति होती है, उसका ज्ञान होता है तो अकर्ता पर वो चला जाता है। ऐसा ज्ञानी कोई भी पदार्थ को निमित्त तरीके नहीं देखता, निमित्त मात्र देखता है, वो निमित्त मात्र है, निमित्त नहीं है। निमित अगर देखा तो यहां नैमित्तिक खड़ा हो जाएगा, वो निमित मात्र देखता है, इससे नैमित्तिक की स्थिति ऐसी यहां खड़ी नहीं होती, उसको वो ज्ञेय बन जाता है उसका। ये तो पर्ग नहीं है, उसका नाम निमित मात्र है, निमित मात्र है। ज्ञानी ऐसे देखता है, निमित तो उसको भी होता है मगर वो निमित को निमित से नहीं देखता, निमित को पर्ग नहीं तरीके देखता है, निमित मात्र देखता है। इसलिए यहाँ निमित की अपेक्षा वाला नैमित्तिक यहाँ खड़ा नहीं होता, उसको तो स्वाभाविक अभेदपना ही अंदर उसकी परिणति में भी ज्ञायक के साथ चल रहा है। तो कहते हैं कि अनादिकाल से बंधा हुआ आत्मा को पुद्गल कर्म से बंधा हुआ स्पर्शावारूप अवस्था से अनुभव करने पर बद स्पष्टपणा भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तो भी पुद्गल से जरा भी नहीं स्पर्शावा योग्य ऐसा आत्म स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर बद स्पष्टपणा अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। सब जगह यही बात आएगी कि आप अपने अवध अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा 5 भाव स्वरूप एक आत्मा एक रूप है उसकी दृष्टि ज्ञान और लीनता करो तो ये बद स्पष्ट आदि भाव है वो अभूतार्थ और असत्यार्थ हो जाएंगे। माने उसका मतलब है कि वो तुझे दिखेंगे ही नहीं, तुझे आत्मा दिखने लगेगा, उसका मतलब ही वो अभूतार्थ और असत्यार्थ हो गया। क्योंकि सत्यार्थ और भूतार्थ को देखा उसको कौन असत्यार्थ है कौन अभूतार्थ है ऐसा विकल्प होता ही नहीं। ऐसी ये चर्चा है, पहला बोल हुआ है, आगे का बोल पर कल चलाएंगे। सर्वभवी जीव ऐसा स्वरूप समझकर मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भाव।